हरे कृष्णा राजप्राण दास आपका स्वागत करते हैं इस साप्ताहिक श्री कृष्ण भावना मित्र रेडियो शो में। नमस्कार, मैं श्री राधा गिरधारी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और आनंदमय रखे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं श्री राधा गिरधारी मंदिर में जो 1229 कोट्सविल रिवर हेड हाईवे पर है, जिसे हाईवे 28 के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर श्री राधा गिरधारी की दैनिक पूजा सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के साथ शुरू होती है, जिसके बाद सुबह 7 बजे दर्शन आरती और दोपहर 12:30 बजे भोग आरती होती है। दोपहर 1 से 1 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं, फिर शाम 7 बजे संध्या आरती होती है और 9 बजे शयन आरती के साथ मंदिर बंद हो जाता है। हर रविवार को विशेष पब्लिक प्रोग्राम 12:30 बजे आरती के साथ शुरू होते हैं। आरती के बाद श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित श्री कृष्ण कथा होती है। फिर हमारे संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है और 2:30 बजे महाप्रसाद के साथ दिन का कार्यक्रम समाप्त होते हैं। कृपया अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए और भगवान का दर्शन करें, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करें। लीजिए सुनिए पूज्य शुभ विलास जी से सुंदर कांड की कथा।
और सारे वानरों को प्रेरणा देने लगे, बोलने लगे चलो हम कोशिश करते हैं समुद्र पार करने की। अंत में उनको जब वो अलग अलग लोग जो है अलग अलग बता रहे थे हम कितना जा सकते हैं, तो उस समय सबको लग गया कि हम समंदर पार नहीं कर सकते। तो सब टेंशन में आ गए, सब डिप्रेस्ड हो गए और सब रोने लगे। कुछ कुछ वानर जो है उनका जो होप है, विश्वास है, टूटने लगा, एस्पोंडेंट होने लगे। और उस समय सारे वानरों ने यह निश्चय कर लिया कि हम वापस तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने उनको चेतावनी दी थी कि यहां से आप लोग जा रहे हो, 1 महीने के अंदर आप अपना पूरा दिशा जो है उसको संपूर्ण दिशा को आप देख लो और वापस आके बताओ सीता किधर है। तो सबको 1 महीने का वार्निंग दिया और सुग्रीव ने सबको यह भी बताया 1 महीने के अंदर यहां पे पहुंचे नहीं तो आपको मार देंगे। तभी सबको टेंशन हो रहा था, वापस जाएंगे तो मरेंगे, आगे जा भी नहीं सकते, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। इतना निश्चित हो गया कि हम वापस तो नहीं जाएंगे, मरना ही है तो यहां पे बैठ के मर जाते हैं। तो सारे वानरों ने यह निश्चित कर लिया कि हम अभी यहां पे मरते दम तक राम कथा करेंगे, भगवान राम के बारे में बातचीत करेंगे। सारे वानर जो है राम कथा करने लगे और मतलब ये प्रैक्टिकली सुसाइड अटेम्प्ट जैसा था। बेसिकली रामायण में 3 सुसाइड अटेम्प्ट होता है, एक है आगे जाके एक और आने वाला है और उसके बाद और एक आने वाला है। तीनों सुसाइड अटेम्प्ट में एक ही सोल्यूशन है, रामकथा। अगर किसी को सुसाइड करना है तो भाई थोड़ा रामकथा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं? तो यहां पे सारे वानर जो है एक दूसरे को रामायण सुनाने लगे और सुनाते सुनाते जटायु का वर्णन आ गया। और जैसे ही जटायु का वर्णन आया और जटायु का जो कहानी बताया उन लोगों ने एक दूसरे को, ऊपर से एक बहुत बड़ा आवाज आया और ऊपर उन्होंने देखा कि इतना विशाल पक्षी बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर और वो विशाल पक्षी जो है उनको देख रहा है। किस मूड में देख रहा है? उस विशाल पक्षी को लग रहा है ये सब मरेंगे और इनको मैं खा लूंगा। लेकिन वो पक्षी बेचारा वो चल भी नहीं पा रहा था, उड़ भी नहीं पा रहा था, इतना बड़ा था। तो लोगों को समझ में आ गया, वानरों को समझ में आ गया कि इसके पास कुछ तो है नॉलेज, तो गए उसके पास। बाद में पता चला कि यह संपाति है, जटायु का भाई, और संपाति ने अपने शक्ति से वानरों को बताया कि सीता समुन्द्र के उस पार है 800 मील दूर लंका में। तभी वानरों को यह निश्चित करना था कि कैसे जाएंगे वहां पे। तो अंगद जो है सबको प्रेरणा देने लगा, तो सब लोग अपना अपना क्षमता बताने लगे। एक ने बताया मैं 50 मील कर सकता हूं, दूसरे ने बताया मैं 100 मील कर सकता हूं, ऐसे सब लोग अपना अपना बता रहे थे। अंत में अंगद ने कहा मैं 800 मील कर सकता हूं। तो सब लोग खुश हो गए, अरे भाई एक तो मिल गया जो जा सकता है लंका। लेकिन अंगद ने कहा एक प्रॉब्लम है। तो लोगों ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, 800 मील जा सकते हो? बोला वापस आने का गारंटी नहीं है। मतलब आप सोचो लंका पहुंच गए वापस नहीं आए तो फायदा क्या आपका लंका जाने का। तो सब लोग टेंशन में आ गए कि अभी कौन जाएगा। तो सारे वानर जो है, मतलब अंगद वापस क्यों नहीं आ सकता है, किसी ने उसको पूछा नहीं और अंगद ने किसी को बताया नहीं। निजी मामला है बेसिकली है। लेकिन एक थे वहां पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, वो है जांबवान। जांबवान को समझ में आया कि ये वापस क्यों नहीं आ सकता है। प्रॉब्लम एनर्जी का नहीं है, प्रॉब्लम एबिलिटी का नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। अंगद जो है वाली पुत्र है, और वाली पुत्र होने के वजह से उसके अंदर वाली जैसे बहुत सारे गुण भी है। अंगद को लग रहा है अगर मैं लंका पहुंच गया और लंका के सुवर्ण नगरी से इतना आकर्षित हो गया कि मैं वहीं पर रहना चाहता हूं, तो वहां क्या होगा। जैसे कोई आदमी लास वेगास पहुंच गया, बहुत कम चांस है वापस आने का, है ना। इतना वहां पे माया नगरी है, वो अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए जाओ ही मत। सो एटलीस्ट अंगद वॉज हॉनेस्ट, वो मतलब उसको मालूम था भाई मेरे पास कैपेसिटी नहीं है वापस आने का, अकेला जाऊंगा तो वन वे टिकट हो जाएगा। तो अंगद ने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो जांबवान देखने लगे कि सब लोग जो है अभी चुप है, कोई जा नहीं पा रहा है। जांबवान अपना कहानी बताने लगे। जांबवान कहने लगे कि मैं जब नव युवक था, मैं पूरा ब्रह्मांड एक बार नहीं दो बार नहीं 21 टाइम्स में वामन देव का जो चरण कमल है उसको प्रदक्षिणा किया। तो मतलब प्रैक्टिकली पूरा यूनिवर्स पार कर लिया 21 टाइम्स। लेकिन अभी मेरा हालत इतना खराब है, मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूं कि मैं एक छोटा सा जो पडल है उसको भी छलांग नहीं मार सकता। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ना अपने पुराने कहानी बताते रहते हैं। बचपन में ये किया मैंने, जवानी में मैंने ये किया। अरे भाई तूने पहले क्या 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 फर्क पड़ता है, अभी क्या कर सकते हो तो बताओ। तो कुछ लोग जो है अपने पुराने जीवन में अटक जाते हैं। लेकिन जांबवान जो है बता रहे मैं पहले ये सब कर सकता था लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे कि कौन कर सकता है उनमें से। तो जांबवान ने जब देखा कि एक ही व्यक्ति है जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक, वो है हनुमान जी। तो जांबवान जाके हनुमान जी के पास बैठ जाते हैं और हनुमान जी को याद दिलाने लगते हैं कि वो कौन है। वैसे हनुमान जी ने क्यों बोला नहीं अभी तक, क्योंकि हनुमान जी के हिसाब से वो सवाल ही गलत है। क्या सवाल था, तुम कितना कर सकते हो, है ना। हनुमान जी के हिसाब से वो सवाल ही गलत है। क्यों, क्योंकि हनुमान जी जो है अपने आप को एक तीर समझते थे। अभी तीर कितना दूर जा सकता है, तीर के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, जो चलाने वाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हनुमान जी अपने आप को तीर के समान समझते थे, और तीर जब राम के हाथ में होता है कितना दूर तीर जा सकता है वो तीर के ऊपर डिपेंड नहीं है, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। और भगवान का तीर तो पूरा दुनिया पार कर सकता है कि नहीं। तो ये लोग सब लोग अपना अपना क्षमता बता रहे, मैं इतना कर सकता हूं, मैं उतना कर सकता हूं। हनुमान जी बोल रहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, राम के ऊपर है, जितना दूर जहां भेजना चाहेंगे भेज सकते हैं। तो यहां पे जांबवान जो है हनुमान जी को याद दिलाने लगे कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। और वो बताने लगे कि कैसे बचपन में उन्होंने सूर्य तक पहुंच गए, वो कैसे बचपन में इतने पराक्रम इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। तो जैसे जांबवान हनुमान जी को याद दिलाने लगे अलग अलग चीजें, हनुमान जी उनको प्रेरणा आने लगे, वो खड़े हो गए और इतना विशाल रूप धारण कर लिया और भाग के महेंद्र पर्वत की तरफ गए। समुद्र के तट पे महेंद्र पर्वत था और तीन चलांग में सीधा महेंद्र भट्ट के पर्वत की चट्टान तक पहुंच गए और इतना विशाल रूप धारण करके खड़े थे महेंद्र पर्वत के ऊपर। जो नीचे वानर थे उनको लग रहा था एक पर्वत जो है दूसरे पर्वत के ऊपर खड़ा है, जैसे कूर्म भगवान जो है इतने विशाल है और उसके ऊपर मंदार पर्वत खड़ा है, उसी तरह हनुमान जी जो है महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े थे। और सारे जो वानर है हनुमान को देखने लगे तो इतने प्रभावित हो गए और जाम्बवान हनुमान को प्रेरणा दे रहे, बोल रहे उत्तिष्ठ तुम उठो और जाओ और पराक्रम करो अपना। तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली बन गए और उनकी सारे शक्तियां उनको पुनः याद आ गई और वहां पे खड़े होके पर्वत के ऊपर खड़े होके चिल्लाने लगे राम, बहुत जोर से भगवान का नाम लिया। और जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं उनका जो शरीर है बहुत विस्तारित हो रहा है। नीचे सारे वानर खड़े हैं, वानरों का किसी का साइज बड़ा नहीं, सब नॉर्मल थे, वही नॉर्मल साइज थे, लेकिन उनमें से एक वानर जो है इतना बड़ा बन गया सडनली। अब सोचिए आप में से एक आदमी एक जो भक्त है वो सडनली इतना बड़ा बन जाएगा तो क्या होगा आपका? तो यूजुअली जो है एक हमारा कलीग हमारे साथ ही लंगोटिया यार बोलते हैं ना, जो हमारे साथ बड़ा बड़ा भक्ति में आया सडनली वो इतना महान बन गया, तो डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, है कि नहीं? जैसे कहानी आते हैं ना प्रभुपाद जी नेकेड पैंचो का कहानी बताते हैं, एक लड़का जज बन गया, विलेज गांव का जो लड़का है जज बन गया, तो सारे गांव वालों को किसी ने आके शहर से बताया मालूम है कि पैंचो जज बन गया, मतलब तो क्या हुआ सैलरी नहीं मिलता होगा उसको? बोला नहीं उसका खुद का गाड़ी है और बंगला है इतना, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अरे मैंने खुद देखा उसको, जज वहां पे बैठा हुआ था, वो कुछ दिनों के लिए बैठा रहेगा ऐसा बोल रहे। बोला नंगा घूम रहा था हमारे गांव में। तो मतलब जो हमारे साथ जो पले बड़े होते हैं, जो हमारे साथ ही होते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसको देखना आसान नहीं है। ये सारे वानर जो है इनको मानना पड़ेगा। जब देखा उन्होंने एक क्षण के अंदर उनके साथ जो थे वो इतने बड़े बन गए, सारे वानर चिल्लाने लगे, ताली मारने लगे, प्रोत्साहन देने लगे हनुमान जी को, बोलने लगे आप जाओ हमारे लिए जाओ, आप जाके सीता को ढूंढ के आओ, हम यहां पे बैठेंगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सारे वानर मतलब हनुमान जी को प्रोत्साहन दे रहे। रामायण में बता रहे जो आज की तारीख में इंसान नहीं कर सकते उस समय बंदर कर रहे हैं। सोचिए मतलब आज की तारीख में कोई इंसान बड़ा बन गया उसकी महानता को स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है बाकी लोगों को, है ना? रामायण में देखिए एक क्षण में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सारे वानरों ने एक्सेप्ट कर लिया ये सही में एम्पावर्ड है, सही में भगवान ने इनको शक्ति दिया हुआ है। तो सारे वानर जो है जब हनुमान जी को देखा इतने बड़े शक्ति प्रदान कर रहे प्रदर्शन कर रहे हैं तो हनुमान जी को के ऊपर उनको विश्वास आ गया। तो हनुमान जी चिल्लाने लगे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रावण को आज जाके मार दूंगा ऐसा बोलने लगे। बोले सीता वहां पे नहीं मिली पूरा लंका उठा के लेके आ जाऊंगा। तो हनुमान जी अलग अलग चीज बता रहे वो क्या कर सकते हैं, अपना पराक्रम बता रहे बेसिकली। तो जैसे हनुमान जी अपना पराक्रम बता रहे सारे वानर नीचे जो है बहुत खुश हो रहे और खासकर जाम्बवान। एक टीचर जो होता है ना उसका प्रेरणा तब मिलती है जब उसका एक शिष्य महान बन जाता है कि नहीं? तो आप इस कहानी को इस माध्यम से देखिए, जाम्बवान के माध्यम से देखिए। ये कहानी के बाद ना पूरे रामायण में हीरो कौन है? हनुमान जी ही है। हर पेज में हनुमान का ही नाम आता है रामायण में। जाम्बवान का नाम कितनी बार आता है? हार्डली 3-4 बार आता है। सपोज सोचिए अगर जामवान आज की तारीख का मैनेजर होता कोई कंपनी में और हनुमान उसके नीचे काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो जामवान बोलता भाई अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो कोई नहीं करना चाहिए, बैठो रहो यहां भी सब रोते रहो। वो जामवान जाके कोई हनुमान को प्रेरणा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको यश चाहिए, उसको हनुमान की बड़ी नहीं है, उसको अपने यश की बड़ी है। तो दुनिया के लिए हनुमान हीरो है लेकिन हनुमान के लिए जामवान हीरो है कि नहीं? इसको बोलते हैं इनविजिबल लीडर। तो जामवान जो है वो एक इनविजिबल लीडर है। तो उनके जमाने के समय उन्होंने बहुत कुछ किया जामवान ने, है ना, बता भी रहे मैंने ये किया मैंने वो किया, बहुत पराक्रम किया, लेकिन वो जवानी चला गया उनका, यूथ चला गया उनका, अभी बुजुर्ग है वो। तो अभी जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन अपने वाक्यों से वचनों से किसी को प्रेरणा दे रहे हैं कुछ करने की, इसको इनविजिबल लीडर बोलते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर अ सर्टन ड्यूरेशन इन लाइफ यू कैन बी अ विजिबल लीडर बट बियॉन्ड सम सर्टन पॉइंट यू हैव टू बिकम एन इनविजिबल लीडर एंड अलाउ समबडी एल्स टू बिकम अ विजिबल लीडर। इंटरेस्टिंग चीज है हनुमान यहां पे विजिबल लीडर बन गए, वो बहुत सबके सामने पूरे रामायण में हीरो वही है, छा गए। वही हनुमान जब महाभारत में पहुंचते क्या करते है? कुछ नहीं करते, ऊपर बैठे रहे छत पे, बोले यार रामायण में इतना बड़ा हीरो थे अभी महाभारत में क्या किया, छत पे बैठे रहे। ऊपर बैठ के अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे गए भीम को प्रेरणा दे रहे तुम जाओ आगे। तो हनुमान बन गए इनविजिबल लीडर और भीम को आगे किया, है ना। हर व्यक्ति का एक समय होता है जब वो सबके सामने रहता है और बहुत कुछ करता है, और एक समय के बाद जो है हर व्यक्ति को पीछे जाना पड़ता है और दूसरों को आगे भेजना पड़ता है। ये जो है समय का विधान है और इसको स्वीकारना बुद्धिमता है। तो जामवान समझ गए ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं छलांग मारूंगा तो हड्डी बसली हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। और हनुमान को प्रेरणा लगे, हनुमान गए आगे बहुत कुछ करने के लिए। तो हनुमान जी ने सूर्य जो उनके गुरु है उनको नमन किया, इंद्र को नमन किया, ब्रह्मा जी को नमन किया, अपने खुद के पिता वायुदेव को नमन किया और छलांग मारने की वो तैयारी कर रहे थे। जब हनुमान जी छलांग मारने की तैयारी कर रहे थे हनुमान जी को तीन वाक्यों से वाल्मीकि मुनि उनकी गुणगान करते हैं। वो कहते हैं पर्वत संकाश, पहला शब्द हनुमान जी को वाल्मीकि मुनि कहते हैं ये पर्वत संकाश, मतलब ये पहाड़ जैसे शक्तिशाली है, पहाड़ जैसे विशाल और शक्तिशाली है। और दूसरा शब्द कहते हैं मारुतात्मज, मतलब जो वायुदेव की पुत्र है उनकी उड़ने की क्षमता के बारे में बता रहे हैं। और महावेग, महावेग मतलब बहुत तेजी से उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये तीन शब्दों से हनुमान का गुणगान वाल्मीकि मुनि करते हैं और हनुमान जी जो है झुक जाते हैं, छलांग मारने ही वाला है, वे रॉकेट उड़ने वाला है। तो पहले तैयारी कर रहे हैं, हनुमान जी झुकते हैं उड़ने के लिए, छलांग मारने के लिए झुकते हैं। जब वो झुक रहे हैं अपने चारों मतलब दो हाथ और दो पैर के बल पे खड़े हैं और वो अपने दोनों हाथ जो है आगे रखते हैं और अपना एक पैर पीछे करते हैं और एक पैर आगे रखते हैं और छलांग मारने की ऑलमोस्ट छलांग मारने ही वाले थे, वो उनका जो पूंछ है वो पूंछ जो है जोर से पर्वत पर ठा करके पूंछ को मार दे और पूंछ को मार के टेक ऑफ हो जाता है उनका क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स जो भी बोलते हैं उसको, ऐसा धक्का मार के छलांग मार के ऊपर उड़ते हैं। और जब हनुमान जी ने पूरा अपना जोर लगाया पर्वत पे उड़ने के लिए पूरा पर्वत जो है डसने लगा, पूरा महेंद्र पर्वत डसने लगा और महेंद्र पर्वत के ऊपर और महेंद्र पर्वत की सारे गुफाओं में इतने सारे लोग थे, पूरा पहाड़ी डस रहा है, सोचिए अर्थक्वेक जैसा हो गया और अंदर से सारे जानवर भाग रहे हैं और सारे ऋषि मुनि भाग रहे इधर उधर और सारे नाग भाग रहे बाहर। और इतना ही नहीं, जब पूरा पर्वत ढसा, पर्वत में इतने सारे ओर्स थे, सिल्वर ओर, गोल्ड ओर, आयरन ओर, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स थे। जैसे पर्वत दबने लगा, ये सारे मिनरल्स लिक्विड के रूप में बहने लगे और पूरा पर्वत जो है अलग अलग कलर का हो गया। और किन्नर, अप्सराएं सारे इधर उधर से भाग रहे पर्वत से, और सब लोग प्रभावित हो गए कि इतना विशाल पर्वत, इतने विशाल पर्वत को किसने दबाया ऐसे। हनुमान जी जैसे उड़े उस पर्वत से, वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन आता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई गांव में जाता है, तो एक नए गांव में, मतलब कोई व्यक्ति बहुत समय के बाद गया हुआ है और गांव में बहुत दिन रहता है, तो सारे गांव वाले उनके साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जिस दिन वो निकल रहा है गांव से, पूरा गांव जो है वो चल के जाता है गांव की सीमा तक उसको छोड़ने के लिए। उसी प्रकार हनुमान जी उस पर्वत पे थे, जब वो उड़ रहे उस पर्वत से, तो वो सक्शन फोर्स होता है ना, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं, उनका सक्शन फोर्स इतना तीव्र है कि सारे पेड़ और सारे जानवर उड़ने लगते उनके साथ। अब सोचिए, हनुमान जी ऊपर उड़ रहे और पीछे पेड़ उड़ रहा है, हाथी उड़ रहा है, शेर उड़ रहा है, और सारे जो इतना पत्ते हैं और फूल है सब उड़ रहे उनके साथ। और जो गांव वाले हैं, एक सीमा तक पहुंचते हैं और वापस गांव में आ जाते हैं ना, वैसे हनुमान जी आगे चले जाते हैं और सारे गांव वाले जो अंदर गिर जाते हैं समुन्द्र के अंदर। अब सोचे क्या दृश्य होता होगा ना, हनुमान जी उड़े उनके पीछे इतने सारे, और नीचे वानर खड़े है और उनके ऊपर फूल बरस रहा है। हनुमान जी जैसे उड़ रहे हैं, सारा फूल जैसे वानरों के ऊपर बरस रहे, तो सारे वानर इतने खुश हो गए, ताली मार रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, हनुमान को प्रेरणा दे रहे आगे जाने की। और ऐसा लगता है कि वो समुन्द्र जो है, वो पूरा जो सेक्शन है समुन्द्र का, अलग अलग फूल फल और अलग अलग चीजों से कलर उनका बदल जाता है, समुन्द्र का कलर बेसिकली। तो जब हनुमान जी उड़ने लगते हैं, तो सारे वानर जो उड़ रहे हैं, सॉरी वानर जब देख रहे हैं हनुमान जी को, तो एक वानर कहने लगता है कि क्या शक्ति का प्रदर्शन है। दूसरा वानर कहने लगता है, ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, शक्ति के साथ सौंदर्य का प्रदर्शन भी है। और दूसरा वानर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि एक राजा जा रहा है, राजा के पीछे उसकी पूरी प्रजा जा रही है उसके साथ साथ। तो ऐसा सारे वानर जो है हनुमान जी का गुणगान करने लगते हैं। तो एक वानर कहने लगता है कि हनुमान को देखो कैसे उड़ रहे हैं, उनके दो हाथ सामने हैं ऐसे, और पूरा शरीर ऐसा स्ट्रेट है। तो एक वानर बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत विशाल सांप, जो पांच फण वाला सांप है, वो पहाड़ से उड़ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के गुणगान होते हैं और सारे वानर जो है खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी अभी निकल गए वहां से और वो अकेले आगे बढ़ रहे हैं समुन्द्र की तरफ, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान जी समुन्द्र के एकदम पास से गुजरते हैं, पहले जब समुन्द्र के पास से गुजरते हैं, उनका तेज इतना तीव्र है कि पूरा समुद्र ऐसा विभाजित हो जाता है, और सारे जो नीचे जानवर है, मछलियां है, वो ऐसा लगता है कि पानी ही चला गया एक क्षण के लिए। तो ऐसा हनुमान जी उस तेजी से उड़ने लगते हैं, और वहां हनुमान जी को उड़ते हुए देख के सारे जो अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, ये सब बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उस समय जब हनुमान जी तेजी से उड़ रहे हैं, सगर जो वरुण देव है, वो देखते हैं कि हनुमान राम की सेवा में आगे जा रहे हैं सीता को खोजने के लिए। तो वरुण देव है, जिनका नाम सागर है, उनका नाम सागर कैसे पड़ा, क्योंकि सगर महाराज जो थे, उन्होंने सारे जो सागर का निर्माण उन्होंने किया था। और सगर महाराज कौन है, सगर महाराज राम के पूर्वज है। तो सगर महाराज ने समुंदर को मदद किया था बनने के लिए, तो समुंदर को लग रहा है कि क्योंकि सगर महाराज ने मेरी मदद की, मुझे उनकी जो वंश में राम आए हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और क्योंकि हनुमान राम की सेवा में है इसलिए मुझे राम की सेवा करनी चाहिए। कृतज्ञता का मतलब क्या है? किसी ने आपको मदद किया, उस व्यक्ति को जब मदद चाहिए आपको उसको मदद करना है, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। तो वरुण देव जो है एक पर्वत को बुलाते हैं जिसका नाम है मैनक, और वो पर्वत मैनक जो है वहां पे समंदर के नीचे बैठा हुआ है। उस पर्वत की भी कहानी है, मैनक जो थे वो पर्वतों में बहुत श्रेष्ठ पर्वत थे, तो उस समय जो है सारे पर्वतों के पंख होते थे। आप सोचो पर्वत के पंख।
रघुपति राघव राज
Yeah.